Om Namah Siddhaya. Om Namah Siddhaya. Om Namah Siddhaya. Om Shuddhatmane Namah. Samyukta Darshane Charane Guna. पाय केवल ज्ञान उपाय प्रभु भये भजो शिवराय जिनवानी के ज्ञान ते हो तत्त्व श्रद्धान चरण धारि केवल पावे पद निर्वाण। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लब्धिसार नामक ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ के आधार से यहाँ हम सम्यक दर्शन के पूर्व जो पांच लब्धि नियम रूप से होती है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। वो पंच लब्धि के प्रकरण में अलग अलग लब्धियों में कर्मों की और जीवों की कैसी कैसी अवस्थाएं होती है, कर्मों में क्या परिवर्तन होते हैं और जीव के परिणाम कैसे कैसे होते हैं उसकी चर्चा चलेगी। वो चर्चा समझ में आवे इसलिए यहाँ कर्मों की कुछ अवस्थाओं का हम ज्ञान करने जा रहे हैं। अभी हमने कल घाती और अघाती कर्मों के स्पर्धक देखे थे। जब स्पर्धक कहते हैं तो समझना ये अनुभाग के बारे में बात चल रही है, और जब निषेक कहते हैं तो समझना कि ये स्थिति को बताने वाली है। निषेक यानी ग्रुप ऑफ परमाणु जिनकी समान स्थिति है, और स्पर्धक में हमने देखा था एक वर्ग किसको कहना है, याद है, कर्म परमाणु को वर्ग कहा। एक एक कर्म परमाणु को एक एक वर्ग कहेंगे, क्यों? उसमें फलदान की विशिष्ट शक्ति है। जिनमें जिनमें समान अविभाग प्रतिच्छेद है, समान जिनका फल लेने की उसकी इंटेंसिटी है, ऐसे अनेक परमाणुओं के ग्रुप को हम वर्गणा कहेंगे। वो भले कोई परमाणु यहाँ पर है, कोई हाथ में है, कोई पैर के प्रदेशों में, अलग अलग प्रदेशों में है, परंतु सबकी अनुभाग समान है, तो उस ग्रुप को हम नाम देंगे पहली वर्गणा या वर्गणा। जिनमें मिनिमम अनुभाग है उसको कहेंगे पहली वर्गणा। इसमें एक अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा है ऐसे ग्रुप को कहेंगे दूसरी वर्गणा, और एक अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा है उसको कहेंगे तीसरी वर्गणा। इस तरह से अनेक यानी अनंत वर्गणाओं के समूह को हम कहते हैं स्पर्धक। जो पहले वर्गणा में जितना प्रतिवर्ग में जितना अनुभाग था उससे डबल जहां हो जाता है दो गुना, उसको दूसरा स्पर्धक कहेंगे। फिर वहां से एक एक वर्गणा बढ़ते हुए वो दूसरा स्पर्धक होगा। जहां तीन गुना होता है वहां से तीसरा स्पर्धक। इस तरह से स्पर्धक भी अनंत होते हैं। स्पर्धक है वो अनुभाग को बताते हैं और निषेक है वो स्थिति को बताते हैं। इतनी बात हमने देखी। ये जो अनंत स्पर्धक है उसको अनुभाग की अपेक्षा मंदता से तीव्रता की ओर अगर उनके नाम देखने हैं तो उसको नाम देकर चार चार ग्रुप्स बनाए हैं। घाती कर्मों के ग्रुप हमने कल देखे थे, लता, दारू, अस्थि और शैल। अघाती कर्मों में दो भेद थे, पुण्य प्रकृतियों में गुड़, खांड, शर्करा और अमृत, और उसी के पाप प्रकृतियों में नीम, कांजीर, विष और हलाहल। ये तो दृष्टांत के तौर पर नाम दिए हैं। उसमें अनुभाग ऊपर के जो नाम है उनमें अनुभाग ज्यादा समझना। अब हम उसके एप्लीकेशन क्या है, ये ऐसा क्यों, हमने नाम क्यों सीखना है, तो उसकी बात हम और आगे बढ़ाएंगे। हिंदी में 48 पृष्ठ पर आए थे कल जो हमने घाती कर्म अघाती कर्म का जो वहां देखे थे, उसमें तीन पृष्ठ कम हो गए, 45 पृष्ठ है,
45
गुजराती में। अभी ये जो घाती कर्म अभी हमने देखे है और ये जो सारे स्पर्धक भी देखे हैं, तो घाती कर्म दो प्रकार के होते हैं। क्या कहा? घाती कर्म दो प्रकार के हैं। कैसे है ये प्रकृतियां जिसको कहते हैं, एक तो होते सर्वघाती प्रकृति। क्या कहा?
सर्वघाती।
देखो अभी तक हमने घाती कर्म कौन कौन से देखे थे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। अब अकेले ज्ञानावरण की बात करेंगे। ज्ञानावरण की हमने पांच प्रकृतियां देखी थी, उत्तर प्रकृति। कौन कौन सी?
मति
ज्ञानावरण। मति ज्ञान नहीं कहना, मति ज्ञान तो ज्ञान का भेद हुआ। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन परे ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। अब इनमें से हम बात करेंगे। तो उसमें कुछ प्रकृतियां सर्वघाती है और कुछ देशघाती है। अब इसका अर्थ क्या है? सर्वघाती यानी पूरा घात करते हैं। किसका? अपने प्रतिपक्षी का। ज्ञान का नहीं कहना, अपने प्रतिपक्षी का। जैसे केवल ज्ञानावरण पूरा घात करती है। किसका? केवल ज्ञान। यानी पर्याय में केवल ज्ञान थोड़ा प्रकट है और थोड़ा नहीं, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल प्रकट नहीं है। तो केवल ज्ञानावरण का उदय होता है तो केवल ज्ञान बिल्कुल प्रकट नहीं है। तो केवल ज्ञानावरण ने उसका प्रतिपक्षी केवल ज्ञान उसका पूरा घात किया। ये बात ख्याल में आती है? अब हमको मति ज्ञानावरण का भी उदय चल रहा है, तो क्या हमारा मति ज्ञान भी पूरा मिट गया है? क्या हमारा चल रहा है? अभी जो हम जान रहे मति शुद्ध ज्ञान तो चल रहा है हमारा। तो मति ज्ञानावरण का उदय होते हुए भी मति ज्ञान का पूरा आवरण नहीं डाल सकता। इसको कहते हैं देशघाती, पार्शल घात करता है, पूरा घात नहीं कर सकता। बेन ख्याल में आता है? प्रकृतियों के भेद चल रहे हैं। किसके? घाती कर्मों के। कुछ प्रकृतियां पूरा घात करती है अपने प्रतिपक्षी का, और कुछ प्रकृतियां अपने प्रतिपक्ष का पूरा घात नहीं करती, पार्शल घात करती है। उसको पार्शल यानी देश, एक देश, उसको कहते हैं पार्शल। तो उसको कहेंगे देशघाती। कौन सी दो प्रकृतियां देखी भाई? सर्वघाती और देशघाती। किसको देशघाती कहना?
पार्शल,
जो पार्शल घात करते हैं। और सर्वघाती पूरा घात करते हैं। तो ऐसी कौन सी प्रकृतियां? अभी हमने ज्ञानावरण की पांच देखी है, उसमें केवल ज्ञानावरण जो है वो पूरा घात करती है, तो वो सर्वघाती प्रकृति है। और अन्य जो चार है वो देशघाती प्रकृति है। अभी हमको इतना ही ध्यान में रखना है। अभी दर्शनावरण में केवल दर्शनावरण है वो सर्वघाती है, वो जो अन्य तीन है वो देशघाती है, और सभी निद्रा, पांच प्रकार की निद्रा हमने देखी थी, वो कैसी है? सर्वघाती है। किसका पूरा घात करती है?
जागृत अवस्था का।
जागृत अवस्था, दर्शन का पूरा घात नहीं करती। नींद में भी ज्ञान दर्शन का व्यापार तो चल रहा है, तो दर्शन का पूरा घात करे तो स्वभाव पूरा मिट जाए, ऐसा नहीं होता कभी। तो जागृत अवस्था का पूरा घात करती है। इस तरह से सर्वघाती और देशघाती का अर्थ लगाना है। अब मोहनीय में देखते हैं थोड़ा। मिथ्यात्व प्रकृति है वो सर्वघाती है। किसका घात करते हैं? मिथ्यात्व का प्रतिपक्ष कौन है? सम्यक्त्व। बिल्कुल नहीं होने देती। मिथ्यात्व का उदय है तो बस मिथ्यात्व चल रहा है, थोड़ा सम्यक्त्व तो खुला है और थोड़ा नहीं, ऐसा नहीं होता। दर्शन मोहनी की और कौन सी दो प्रकृतियां हैं? हमने तीन प्रकृतियां देखी थी, एक मिथ्यात्व देखा, एक सम्यक मिथ्यात्व देखा और एक सम्यक प्रकृति देखी। तो सम्यक मिथ्यात्व भी सर्वघाती प्रकृति है, जिसको मिश्र कहते हैं। जो तीसरे गुण स्थान में जाता है उसके उदय में, वहां भी सम्यक्त्व का पूरा घात होता है। सम्यक प्रकृति ये प्रकृति है, देशघाती है, उसका उदय भी चलता रहे और सम्यक्त्व भी चलता रहे। यानी सम्यक्त्व के चलते रहने में बाधा नहीं है, थोड़ा कुछ उसमें जो कुछ दोष लगता है, परंतु सम्यक्त्व टूटता नहीं है, उसको कहेंगे देशघाती। ऐसे हर एक प्रकृति में ये देशघाती सर्वघाती चलेगी। ये अंतराय के जो पांचों है वो सभी देशघाती है। यानी देखो वीर्य नाम का जो गुण है वो पूरा उसका घात कभी नहीं होगा, थोड़ा ना थोड़ा वो वीर्य। जैसे ज्ञान हमेशा कुछ ना कुछ स्वभाव है ना, तो स्वभाव तो कुछ ना कुछ अंश प्रकट है ही उसका, वैसे वीर्य जो स्वभाव है जीव का, पुरुषार्थ जो है, वो भी उसका अंश प्रकट रहेगा ही। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पढ़ेंगे जो घाती अघाती कर्म का यहाँ जो चार्ट बनाया था उसके नीचे से 45 पेज है, कौन से है 46 पर आ गए। अच्छा हाँ, घाती कर्म में दो प्रकार की प्रकृति पाई जाती है, सर्वघाती प्रकृति और देशघाती प्रकृति।
लास्ट में
स्टार्ट होता है,
हाँ लास्ट पे देखो यहाँ प्रकृति के भेद बता रहे। अभी थोड़ा उपयोग को सूक्ष्म करना, अभी इसमें डिटेल में जाने की, अभी आप सब यानी क्रीम माइंड है अभी यहाँ पर है, और बिल्कुल आप यहाँ समझ सकोगे। अभी हम प्रकृति की बात कर रहे हैं, बाद में यही सर्वघाती और देशघाती शब्द में स्पर्धकों के लिए लगाने वाली हूँ। हाँ ये गौर करना, ये जो बातें है ना, हमने चार चार बार बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े थे, तब तक मैं भी नहीं जानती थी, जब तक पुस्तक नहीं लिखी थी तब तक, इसलिए इस ओर मैं आपका ध्यान पहले से आकर्षित करना चाहती। अभी मैं प्रकृतियों को सर्वघाती और देशघाती कह रही हूँ। अभी हमने देखे ना ज्ञानावरण के पांच में से केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है, इतनी बात देखी हमने। अब हम पढ़ेंगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा, नहीं भी होगा ना तो दो दो बार इस पर डिस्कस करेंगे, ये महत्व का सब्जेक्ट है यहाँ पर। तो सर्वघाती प्रकृति और देशघाती प्रकृति जो अभी मैंने बताया वही पढ़ने जा रहे हैं। जैसे केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण आदि सर्वघाती प्रकृतियां हैं, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपर्य ज्ञानावरण आदि देशघाती प्रकृति है। ये बात आसान है, समझ में आ गई अरविंद भाई, क्योंकि उसको अपना प्रतिपक्ष का घात करते हैं। ये तो हमें बस केवल ज्ञानावरण है वो सर्वघाती, इतना ही याद रखना है। आपको नहीं मिला बेन, उषा बेन, ये घाती कर्म अघाती कर्म लिखा हुआ आपको चार्ट मिला,
नीचे पर चल लो।
अभी हम आगे पढ़ेंगे, देखो अभी तक हमने प्रकृति के नाम देखे, सर्व यानी कोई प्रकृति सर्वघाती होती है और कोई प्रकृति देशघाती होती है। तो ये देशघात करना ये तो अनुभाग की अपेक्षा बताया जाता है ना, उसका जो फल मिलता है तो क्या पूरा घात होता है क्या पार्शल होता है उसकी बात है। अब आगे की बात हम और गौर से देखेंगे। अब इन प्रकृति के जो स्पर्धक है, पहले हमने देखा है कि घाती कर्मों के स्पर्धकों के नाम हमने यहाँ लिखे कितने, कौन कौन से हैं? हाँ चार, कौन कौन से?
लता,
दारु, अस्थि और शैल। उसमें हमने नहीं ये इतना ही देखा था कि लता वाले वो मंद अनुभाग वाले हैं और शैल वाले वो अत्यंत तीव्र अनुभाग वाले हैं। अब ये जो स्पर्धक है, ये स्पर्धकों में भी सर्वघाती और देशघाती स्पर्धक होते हैं, उसकी बात अब हम पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ेंगे देखो। अब इन प्रकृति के जो स्पर्धक है उनमें भी दो प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। यानी जिन स्पर्धकों का उदय होने पर प्रतिपक्ष का पूरा घात होता है उस स्पर्धकों को क्या कहेंगे? सर्वघाती स्पर्धक। और जिन स्पर्धकों का उदय होने पर प्रतिपक्ष का पूरा घात नहीं होता वो देशघाती स्पर्धक। इतनी बात ख्याल में आई, अब आगे बढ़ेंगे।
मिक्सचर ना था एक सर्क होए, बाय डेफिनेशन आइदर ऑल दैट वुड बी सर्वघाती और देशघाती, राइट?
देखो प्रकृति में तो हमने डिफरेंशिएशन किया, केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है। मत अभी हम दो ही प्रकृति की बात करें, अनेक की बात नहीं करेंगे। मति ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है, फुल स्टॉप। अभी हम स्पर्धकों की बात देखने जा रहे हैं, अब प्रकृति को थोड़ा भूल जाओ। स्पर्धकों में भी कितने ही स्पर्धक सर्वघाती है और कितने ही स्पर्धक देशघाती है। अब कौन से सर्वघाती वो बात अभी आगे पढ़ेंगे, क्रम से जाएंगे ना अभी, यानी अभी हम स्पर्धकों की बात ले रहे, अब और आगे पढ़ेंगे। आपके सभी प्रश्नों का जवाब आने वाला है, आपके प्रश्न आपके माथे पर मुझे दिख रहे हैं, हाँ डोंट वरी, और इसका उत्तर जवाब मिलेगा आपको, ख्याल है ना। अभी हमने घाती कर्मों के चार प्रकार के स्पर्धक देखे, अभी अभी देखे ना, अब तीव्रता की ओर से देखेंगे तो शैल, अस्थि, दारु और लता, उनमें से शैल, अस्थि और दारु भाग में से अनंत बहुभाग ये स्पर्धक सर्वघाती स्पर्धक है। अब वहां वो वाला चार देखना है उस बाजू का, ये घाती कर्म है, उनके चार प्रकार के स्पर्धक हैं। ये शैल है वो सर्वघाती स्पर्धक है, अस्थि है वो भी सर्वघाती स्पर्धक है, ये दारु है ना, तो देखो ये शैल यहां से यहां तक दिख रहा है लाल की, वो ब्रेक है बीच में, ये सभी शैल के पूरे है वो सर्वघाती है, अस्थि भी पूरे के पूरे है वो सर्वघाती है। अब दारु के जो ये अनंत है उसमें अनंत बहुभाग और अनंत वाभाग ऐसे दो डिवीजन करने हैं। तो ऊपर का जो अनंत बहुभाग है वो सर्वघाती है, देखो यहाँ लिखा है, ये सर्वघाती लिखा है ना यहाँ पर,
हाँ, लिखा है।
तो ये ऊपर से लेकर दारु का अनंत बहुभाग है वहां तक सर्वघाती स्पर्धक है, दारु के जो अनंत स्पर्धक है उसमें जो अनंत वा भाग है वो और लता के सारे, इसको क्या कहा, देशघाती स्पर्धक। फिर से दोबारा, घाती कर्मों के चार प्रकार के स्पर्धक है, उसमें शैल, अस्थि और दारु का बहुभाग कहेंगे अनंत बहुभाग, ये सारे कैसे है स्पर्धक, सर्वघाती स्पर्धक है। और जो लता भाग वाले और वो दारू भाग वाले में से अनंत भाग थोड़े से, ये सारे है देशघाती स्पर्धक। बहुत आसान है, इतने बात ख्याल में आई ना, अभी अभी आगे तुम कहोगी इसमें बताने की क्या जरूरत है, सर्वघाती प्रकृति के, अभी प्रकृति शब्द लाया मैंने, यानी जैसे केवल ज्ञानावरण प्रकृति के सभी स्पर्धक सर्वघाती होंगे, और देशघाती प्रकृति के, यानी मान लो मति ज्ञानावरण प्रकृति के सभी स्पर्धक देशघाती होते होंगे, ऐसा ही लगता है ना हमको, प्रकृति और स्पर्धक दो शब्द आ रहे हैं।
सभी तो जो आपने ऐड किया अभी,
हाँ
इसमें नहीं,
देखो क्या है, हमें क्या लगा कि सर्वघाती के स्पर्धक सर्वघाती है और देशघाती प्रकृति के स्पर्धक देशघाती हो गए, ऐसा ही लगता है ना। हाँ, तो तुम्हारी आधी ही बात सच है। तो क्या है पूरा सच हम देखेंगे, सर्वघाती प्रकृति के सभी स्पर्धक सर्वघाती स्पर्धक होते हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं, परंतु देशघाती प्रकृति के, अभी मति ज्ञानावरण प्रकृति के दोनों ही प्रकार के स्पर्धक होते हैं। इसका अर्थ क्या है, मति ज्ञानावरण में सर्वघाती स्पर्धक भी है और देशघाती स्पर्धक भी है, और पढ़ेंगे आगे तो और क्लियर होगा, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती, इसे दोबारा समझेंगे। पहले में पहले बहुभाग और एक भाग किसको कहा था, वो दारू के हमने बहुभाग किए थे ना, तो अनंत बहुभाग किसको कहना और अनंत वा भाग किसको कहना, तो अनंत को छोड़ देंगे हम, क्योंकि लोगों को डर लगने लगा, क्योंकि हम हजार को ले लेंगे कि मान लो तुम्हारे 1000 संख्या को 10 से भाग देकर, हमारे पास 1000 है और 10 संख्या से हमने भाग दिया और उसमें से हमको बहुभाग और एक भाग करना, यानी 10 भाग में से बहुभाग कितना है और एक भाग कितना है, 10 में से एक अलग निकालोगे तो कितना रहते हैं, 9 भाग, 1000 को 10 से भाग देकर 9 भाग की वैल्यू कितनी है, क्योंकि 1000 को 10 से भाग दिया तो एक भाग की वैल्यू आती है 100, तो 9 भागों की वैल्यू आएगी 900, यानी हम बहुभाग और एक भाग करेंगे, 10 बहुभाग, 10वें में से बहुभाग और एक भाग, तो 900 और 100 बराबर। ऐसे जैसे किया है वैसे दारु भाग नाम के जो अनंत स्पर्धक है उसको दूसरे एक अनंत से भाग देना, छोटे वाले अनंत से, तो उसका अनंत वा भाग अलग निकालो और अनंत बहुभाग अलग निकालो, जैसे वो 10 में से एक भाग और 9 भाग किया, वैसे अनंत में से एक को अलग निकाला और बाकी जो अनंत है उसको अलग निकाला, उसको कहेंगे अनंत वा भाग और अनंत बहुभाग, बाकी किसी में हमको डिविजन नहीं करना है, दारू वाले स्पर्धकों में ये दो भाग करने हैं। अब आगे तो ये हमने 900 और 100 देखी। अब दारु भाग में अनंत स्पर्धक है, उसे यथा योग्य उससे छोटे अनंत का भाग देंगे तो अनंत ही आएंगे। अनंत को अनंत का भाग दिया तो भी अनंत आए, उसमें से बहुभाग और एक भाग करना है। दारु भाग वाले बहुभाग तो सर्वघाती स्पर्धक है, ऊपर के क्या है अभी हम सर्वघाती है, और नीचे का जो एक भाग वाला है वो क्या है देशघाती स्पर्धक है। अभी फिर यहाँ लिखा है देखो, घाती कर्म जो है उसके दो भेद हैं प्रकृतियों के, सर्वघाती प्रकृति फॉर एग्जाम्पल केवल ज्ञानावरण, देशघाती प्रकृति फॉर एग्जाम्पल मति ज्ञानावरण। सर्वघाती प्रकृति के स्पर्धकों के अभी हमको नाम चाहिए कि जिसके स्पर्धक सभी सर्वघाती ही होते हैं। यदि हम पूछेंगे केवल ज्ञानावरण प्रकृति के स्पर्धकों के नाम बताइए, कौन कौन से, शैल अस्थि दारु बहुभाग, बराबर, क्योंकि सर्वघाती प्रकृति के सभी स्पर्धक सर्वघाती होते हैं। ये तो बहुत आसान है। रमेश भाई ख्याल में है? फिर से, केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है। हमने क्या देखा, सर्वघाती प्रकृति के सभी स्पर्धक कैसे है, सर्वघाती है, और उसके नाम क्या क्या है, शैल अस्थि दारु बहुभाग। ये तो इतनी बात समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ेंगे। वीनाबेन ख्याल में आ रहा है?
हाँ, ये बहुभाग का प्रोपोर्शन क्या 9:1 ही होना,
9:1 नहीं, अनंत 2:1, अनंत 2:1। हाँ, ये समझाने के लिए हमने उसको बताया। हाँ देखो, ये चार्ट में से पहला भाग हमने देखा, घाती कर्म यानी प्रकृति, सर्वघाती प्रकृति, देशघाती प्रकृति। सर्वघाती प्रकृति के सभी स्पर्धक कैसे है, सर्वघाती है, उनका नाम क्या है, शैल अस्थि दारु बहुभाग। अब ये चार्ट का दूसरा हाफ आपके पुस्तक में जो है, देशघाती प्रकृति, फॉर एग्जाम्पल आप कोई बता सकते हैं किसकी बात हमने ली थी, मति ज्ञान। अब मति ज्ञानावरण प्रकृति तो देशघाती है, क्या कहा, प्रकृति देशघाती है, परंतु उसमें स्पर्धक कौन कौन से हो गए, सर्वघाती भी हो गए, देशघाती भी हो गए। तो आप मुझे पूछेंगे, आपने तो अभी अभी कहा तो मति ज्ञानावरण ऐसा कर्म है कि थोड़ा तो मति ज्ञान खुला रहेगा ही, उसका पूरा नाश कभी नहीं होता, तो वो तो देशघाती प्रकृति है, उसका उदय होने पर भी मति ज्ञान चालू रहता है, और आप यहाँ सर्वघाती स्पर्धकों की बात कर रहे हैं। हाँ, प्रकृति देशघाती है और उसके जो स्पर्धक बंधे हुए हैं और सत्ता में पड़े हुए हैं वो तो सर्वघाती है और देशघाती भी है, परंतु उनके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय तीन काल में नहीं आने वाला। तो क्या होगा, सत्ता में से जब उदय होने की काल आएगा तो देशघाती रूप होकर उदय में आएंगे।
तो वो देशघाती होंगे तो अपने
मति ज्ञान को रोक नहीं सकते।
अब उसके
अपने आप ही ऐसे सहज ही वस्तु व्यवस्था होती है कि मति ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं होता। अब उसको क्या कहते हैं, उसको शास्त्रीय भाषा में क्या कहेंगे, वो सब आएगी बात। थोड़ा धीरज रखेंगे ना तो आप ही को सब कुछ ये तो सुलझ जाने वाली है। अभी जो ऐसा लगता है कुछ घोटाला घोटाला है ना,
मेरे को लगा कि अपने आप जीव का स्थिति के पर आता रहता है कि
ये मिथ्या तो अवस्था में भी सब ये बातें चलती है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को भी जो मति ज्ञान है श्रुत ज्ञान है उसके भी सर्वघाती का उदय कभी नहीं होता। तो अभी तो हम यहाँ तक आए हैं, देशघाती प्रकृति में स्पर्धक कौन कौन से है, सर्वघाती भी है और देशघाती भी है। तो अभी हम मति ज्ञानावरण को फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसमें सर्वघाती स्पर्धक कौन कौन से, हमको नाम लेके देखना है, शैल अस्थि दारु बहुभाग। और उसी मति ज्ञानावरण में देशघाती स्पर्धक भी है, उनका नाम क्या है, दारु एक भाग और लता। ये बात ख्याल में आई, अभी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि प्रकृति देशघाती होने पर भी बेन उसके स्पर्धक दोनों प्रकार के हैं। कौन कौन से? सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। ये दोनों प्रकार कौन से प्रकृति में है? देशघाती प्रकृति में। और सर्वघाती प्रकृति में क्या है? सभी स्पर्धक सर्वघाती ही है। हम इसे ज्ञानावरण कर्म पर घटाते हैं। मैंने जो अभी बोल के बताया है वही हम पढ़ेंगे, फिर दोबारा अपना पक्का होगा। केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है, उसके सभी स्पर्धक सर्वघाती है, अर्थात पूरा घात करते हैं। उसका अर्थ क्या है? पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, कर्म कुछ नहीं करता। कि फिर बीच में याद दिलाया है क्योंकि हमें ऐसा लगता है क्या करे, हमारा केवल ज्ञान इसलिए नहीं प्रकट हो रहा है क्योंकि हमारा वो आवरण पड़ा है। ऐसी बात नहीं है। परंतु जब जीव केवल ज्ञान रूप परिणमन नहीं कर रहा हो, तब सामने केवल ज्ञानावरण तथा अन्य ज्ञानावरण कर्मों का उदय विद्यमान रहता है। बस इतनी ही बात। अब ये केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है, उसके सभी स्पर्धक सर्वघाती है। अब दूसरा एग्जाम्पल देशघाती का। मति ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है, इनके सर्वघाती स्पर्धकों का कभी उदय नहीं होता। इट्स अ फैक्ट। हमेशा देशघाती प्रकृति का ही उदय रहता है। किसकी बात चल रही है? मति ज्ञानावरण की चल रही। सभी देशघाती प्रकृतियों में ये रूल मत लगाना, अभी हम मति ज्ञानावरण की बात कर रहे हैं। मान लो सर्वघाती स्पर्धकों का उदय हो जाए तो जीव पर्याय में सर्वथा ज्ञान रहित हो जाएगा, जड़ अचेतन हो जाएगा, जो कभी होता ही नहीं। जीव को घबराने की जरूरत नहीं, मैं अजड़ हो जाऊंगा तो उसका ज्ञान हमेशा खुला रहेगा ही। पर्याय में उसका जानना कभी बंद नहीं होगा, कभी मिटेगा नहीं। अत्यंत हीन दशा, निगोद दशा भी क्यों न हो जाए, उसका जानना कभी नहीं रुकेगा। उस निगोद पर्याय के योग्य ज्ञान वहां भी चलता रहेगा।
सर्वघाती का उदय है ही नहीं।
मति ज्ञानावरण के और श्रुत ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का कभी भी उदय नहीं होता। इसका अर्थ क्या है? सभी जीवों को, केवल ज्ञानियों को छोड़ो, मति श्रुत ज्ञान तो हर समय चलेगा ही चलेगा। निगोद हो या मुनिराज हो या बारहवें गुणस्थानवर्ती हो, मति श्रुत तो है ही है। अब इन एडिशन किसी को अवधि मनोपर्य होगा तो होगा, मुनिराजों को मनोपर्य भी होगा, चौथे गुणस्थान के ऊपर अवधि ज्ञान भी होगा, तो उसकी भी बात करेंगे अभी हम। अभी तो हमने दो प्रकृति देखी। मति ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है, उसमें स्पर्धक कौन कौन से? सर्वघाती भी है, देशघाती भी है, उनके नाम भी हमने देखे। मति ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का कभी भी उदय नहीं होगा।
सेम थिंग फॉर श्रुत ज्ञान,
सेम थिंग फॉर श्रुत ज्ञानावरण। अभी हम आपसे प्रश्न पूछते हैं। हमने देखा केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है, अन्य चार है वो देशघाती प्रकृति है। अब उनमें से अवधि ज्ञानावरण की बात कर रहे थे। अवधि ज्ञानावरण प्रकृति कैसी प्रकृति है? देशघाती प्रकृति है। उसमें स्पर्धक कौन कौन से हैं? सर्वघाती भी है, देशघाती भी है। लता बेन, आपका अवधि ज्ञान चल रहा है अभी, है आपके? नहीं है? होने में हमें कोई बाधा नहीं है, आप हो तो हो, हम किसी को बताएंगे नहीं। हा? नहीं है। अवधि ज्ञानावरण प्रकृति कैसी है? देशघाती है। तो आपका अवधि ज्ञान क्यों नहीं है? बहुत अच्छा, आप ही ने बता दिया। सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है, प्रकृति देशघाती होने पर भी अवधि ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय जब तक है तब तक उस जीव को अवधि ज्ञान नहीं। ये सारी निमित्त की भाषा समझना, बार बार अभी हम नहीं दोहराएंगे। मनपरे ज्ञान नहीं है, ये तो मुनिराजों को होता है, और वो भी सभी मुनिराजों को नहीं होता, किसी किसी को होता है। तो मति ये मनपरे ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति होने पर भी जिनको अभी मनपरे ज्ञान नहीं है, हम सबको और जिनको मुनिराजों को नहीं, उन सबको क्या चल रहा है? किसका उदय चल रहा है? सर्वघाती स्पर्धकों का। और जिनके मन परे ज्ञान चल रहा है उनके कौन सा उदय चल रहा है? देशघाती स्वर। इतनी आसान बात है, बिन ख्याल में आया। आप तो आज ही आए ना? हाँ, कुछ नहीं, वो कुछ हम मिस नहीं किया, यही बात चली थी। हाँ। अशोक भाई कुछ ख्याल में आता है कि नहीं आता?
थोड़ा
थोड़ा, बहुत कुछ आ गया।
अंदर से फाइट करते रहते हैं।
कोई फाइट करने की जरूरत नहीं, अपना स्वभाव है जानना, और बिना फाइट के वो सब अंदर से आ जाता है। हाँ? हमें ऐसा डर लगता है, अरे हम नहीं जानेंगे, कुछ नए शब्द सुने तो नहीं घुसेंगे अंदर, कुछ नहीं ऐसा होगा। हाँ, देखो अभी हम आगे पढ़ेंगे यही बात, अभी फिर यहाँ हम देखेंगे। देखो अभी हम कहाँ तक आए हैं। हाँ, अब इस पर से अब क्षोभशम की परिभाषा सिखाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसमें कहीं क्षोभशम की परिभाषा लिखी है? जरा निकालेंगे, पहले वाले होगी शायद, शुरू में है ना, इसके पहले पता नहीं,
आखिरी आखिरी पेज के एक पहले
होगा। कोई बात नहीं, मिल जाएगी, इसके शुरू में होगा क्या, बाद में मुझे नहीं याद है।
नहीं, लास्ट ईयर के आया तो इसमें होगा, लास्ट ईयर है तो इसमें होगा।
हाँ, इसी में लिखे, देखो पुस्तक में देख लो, कोई बात नहीं, बोर्ड पर देखने की जरूरत नहीं है, हम पुस्तक में ही देखेंगे, इसी पृष्ठ पर है। 47 पेज देखना, गुजराती वाला। तुमने अनेक बार सुना है कि, अभी हम पुस्तक में से पढ़ेंगे, वही बोर्ड पर भी है। तुमने अनेक बार सुना है कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान सारे क्षोभशम ज्ञान है। क्षोभशम शब्द सुना है कभी?
सुना।
हाँ, सुना है। एक केवल ज्ञानी कैसे है? क्षायिक ज्ञानी। और हम सब कैसे है? क्षोभशम ज्ञान। शब्द तो सुना है, तो ये क्षोभशम क्या होता है उसको देखेंगे। उनमें प्रतिस्पर्धी कर्मों का क्षोभशम पाया जाता है। जैसे अभी हमें मति ज्ञान है, इसको हम क्षोभशम ज्ञान कहें। मैत्री शुद्ध ज्ञान चल रहा है ना हमें, अभी पर्याय में प्रकट है, तो हम क्या कहते हैं, वो ज्ञान का क्षोभशम चल रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, मति ज्ञानावरण का, अभी हम शुद्ध ज्ञानावरण को बाजू में रखते हैं, मति ज्ञानावरण की कौन सी अवस्था चल रही है कर्मों की? क्षोभशम अवस्था चल रही है। हमारा मति ज्ञान प्रकट है पर्याय में, और उसका प्रतिपक्षी जो प्रतिस्पर्धी है मति ज्ञानावरण कर्म, उसकी कौन सी अवस्था चल रही है? क्षोभशम रूप अवस्था चल रही है। एक क्षोभशम क्या है उसको अभी हम देखेंगे। देखो, तो इसको हम मति ज्ञानावरण पर घटाते हैं। क्षोभशम की परिभाषा इस प्रकार है, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। अब इसे ऐसा भी देखना है, अब वर्तमान काल में, कल हमने जो देखा कि वर्तमान काल में एक निषेक उदय में उदय रूप है, विशिष्ट परमाणुओं का समूह का उदय चलेगा, उस पूरे निषेक में सर्वघाती स्पर्धक, देशघाती स्पर्धक या कम अधिक वाले स्पर्धक होंगे, तो वहां स्पर्धक आ जाए उसमें तो पूरा ज्ञान ही मिट जाएगा। सर्वघाती स्पर्धक तो सत्ता में पड़े हैं, परंतु वर्तमान काल में क्या पोजीशन है उसको देखते। देखो क्या कहते हैं, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। उदयाभावी का क्षय का अर्थ है उदय हुए बिना ही उसका क्षय हो जाता है। क्षय हो जाता है ना, वो खिर जाएगा परमाणु, किस रूप से? देशघाती रूप से खिर जाएंगे। वर्तमान समय छोड़कर एक समय ऊपर तक वो सर्वघाती रूप से है, जब वर्तमान में प्रवेश करते हैं तो वो देशघाती हो जाते हैं। सत्ता में पड़े पड़े कैसे थे? सर्वघाती थे, सत्ता में सर्वघाती रूप से पड़े हुए हैं, बंधते बंधे थे तभी सर्वघाती देशघाती सब बंधे थे। अब यहां जो सर्वघाती का क्या होगा, सत्ता में तो रहेंगे, वर्तमान काल में क्या होगा उसका उदयाभावी क्षय का अर्थ क्या, क्योंकि अभी स्थिति तो पूरी हुई है, वो खिरेंगे तो सही, किस रूप में खिरेंगे? देशघाती होकर खिरेंगे, अपने स्वरूप से नहीं खिरेंगे, तो उसके उदय का अभाव, यानी उस अनुभाग का उदय नहीं हुआ, सर्वघाती रूप से अनुभाग नहीं उदय में आया, किस रूप से उदय में आया है? देशघाती रूप से। तो उसको कहते हैं उदयाभावी क्षय। परमाणु तो उदय में आ रहे हैं, प्रदेश का उदय चल रहा है, अनुभाग का उदय नहीं हो रहा। तो किस रूप अनुभाग हो रहा है? देशघाती रूप अनुभाग। अभी जो शैल अस्थि और दारू है, परमाणु तो वही के वही रहे, अब उनका अनुभाग कैसा हुआ? लता जैसा हो गया और उस रूप होकर उदय में आया। तो कहते हैं वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। दूसरी क्या बात है? भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का। कौन सा? सर्वघाती स्पर्धकों का। भविष्यकालीन यानी सत्ता में पड़े हुए, क्या होती है उनकी अवस्था? सदवस्था रूप उपशम है, वहीं पर बने रहा, सर्वघाती रूप से उदय में नहीं आना। क्योंकि हम देखते हैं ना, उदीर्णा होती है, ऊपर के कुछ परमाणु नीचे आते रहते हैं, उदय में भी आते हैं, तो वो सर्वघाती रूप से उदय में आवे तो क्या होगा? तो ज्ञान का नाश हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो भविष्यकालीन उन्हीं का, उन्हीं का यानी उन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों का सद अवस्था रूप उपशम यानी है वहीं पर है, उदीर्ण होकर नीचे नहीं आ रहे, उसको कहेंगे सदवस्था रूप उपशम। और उदय तो होगा ना, किसका होगा? तो वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। मति ज्ञान आवरण प्रकृति तो है, उसमें दोनों प्रकार के स्पर्धक है, तो सर्वघाती स्पर्धक हमेशा सत्ता में बने रहेंगे। जब स्थिति पूरी होने को आई तब वर्तमान में उदय होने का समय आया, तो क्या होगा? देशघाती रूप होकर उदय में आएंगे। तो उस ये सब पूरी अटपटी परिभाषा लगती है, तो ये ऐसे ही घटित करना है। अभी इसका और आगे समझाया है। हाँ,
सर्वघाती स्पर्धक अनुसार उदय आवे त्यारे अनुभाग नो उदय न थाय, पण देशघाती थाय, सो पाछा बंधाय एटले?
नहीं नहीं, ये नए बंधे की बात नहीं, पुराने जो बंधे थे वो जब उदय में आते हैं तो सर्वघाती रूप से बंधे तो थे, अब उदय में आते आते क्या हुआ? देशघाती रूप टर्न होकर उदय में आए। किसकी बात चल रही है? एकमात्र मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण की बात। या अवधि ज्ञानावरण में क्या होगा वो बाद में देखेंगे हम। इतनी बात ख्याल में आई? हाँ, अभी और आगे पढ़ेंगे, पुस्तक में यही बात लिखी। वर्तमान में सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं होना ही क्षय कहलाता है। उस रूप से उदय नहीं है, उदय परमाणु तो अभी खिरेंगे ही, वो थोड़ी कायम के लिए जीव के साथ रहेंगे, उनका तो कॉन्ट्रैक्ट जितना है उतना ही रहेगा। स्थिति पूरी होने पर कोई परमाणु जीव के साथ नहीं रहेगा, ना कर्म का रहेगा ना शरीर का रहेगा। वो पुद्गल को थोड़े टाइम है आपके पास लगे रहने का, क्यों?
दूसरा काम करना होगा।
अरे उसका अपना अनादि अनंत पूरे पर्याय का क्रम सुनिश्चित है। शरीर के भी परमाणु है ना, हमें तो लगता है कि ये कल जो आईने में देखा आज भी वही है, उसमें अनंत नए परमाणु आते रहते हर समय और अनंत चले जाते, उसमें वो समय प्रबद्ध प्रमाण आते हैं। रमेश भाई, शरीर के परमाणु हर समय अनंत लेते हम और पुराने स्टॉक में से अनंत चले जाते हैं, और हम बर्थडे मनाते रहते किसका? गए उसका क्या आए?
तो फिर सदा युवक क्यों, युवन क्यों नहीं रहता?
हाँ हाँ बोलो।
अच्छा, अगले पैराग्राफ में है,
अभी अगले पैराग्राफ पढ़ेंगे पहले। हाँ, फिर आपका प्रश्न,
मतलब
अच्छा प्रीवियस, अच्छा गुजराती अगला, गुजराती अगला। हाँ हाँ, वो हिंदी अगला का अर्थ। हाँ हाँ बोलो, कोई कोई बात नहीं। हाँ,
भविष्यकालीन तेज स्पर्धकों अवस्था उपशम, मतलब कि वो स्पर्धक है वो सत्ता में पड़े हुए हैं,
पड़े हुए। हाँ,
वही ना?
हाँ, वही पर तो पड़े रहना ना।
सद
अवस्था रूप उपशम,
मतलब कि वहाँ
उपशम की भी दो प्रकार होते हैं। हाँ, वो जो अंतरकरण होता है बाद में उपशम होता है, जो हम आगे पंचलब्धि के प्रकरण में देखेंगे उपशम सम्यक्त के काल में, वो अलग टाइप का उपशम है। ये कैसा है? सत्ता में है, अभी उदय में नहीं आ रहे, उसको सदवस्था रूप उपशम कहेंगे।
जब ये सदवस्था बोलती है माने इधर सर्वघाती
अवस्था ने, सद अवस्था ने है वैसे निषेक जहाँ है वहीं पर रहते हैं, अपनी जगह छोड़कर पहले उदय में नहीं आ रहे। सर्वघाती रूप है ना, तो भविष्य में पड़े रहेंगे, वर्तमान में उदय में आएंगे तो देशघाती रूप होकर माइल्ड होकर उदय में आएंगे।
तो जब सद अवस्था में तभी सर्वघाती,
हाँ सर्वघाती ही, तो सत्ता में तो सर्वघाती भी है और देशघाती भी है, क्योंकि बांधे दोनों ही थे, सत्ता में दोनों पड़े हैं। जब उदय में आएंगे तो क्या देशघाती तो अपने रूप से उदय में आएंगे और सर्वघाती वो देशघाती रूप होकर उदय में आएंगे। हाँ, एक समय पहले ही, एक समय पूर्व ही वो कन्वर्ट होकर ही वर्तमान में आते हैं, बाकी अंदर तो सर्वघाती रूप से पड़े। बोलो।
आई थिंक इसमें नहीं आने वाला है। अभी सपोज वो देशघाती थे तो उनका अनुपात बहुत ज्यादा था देश सर्वघाती का कम्पेयर टू देशघाती। अभी वो कन्वर्ट हो गए तो वो
माइल्ड हो गए देशघाती।
वो जो एक्स्ट्रा अनुपात थे देशघाती में, उनका क्या हुआ?
एक्स्ट्रा अनुभाग वाले देशघाती की बात कर रहे हैं।
अभी सर्वघाती देशघाती हो गए।
हाँ, सर्वघाती देशघाती हो गए।
देशघाती में थोड़े स्पर्धक रहेंगे, राइट? थोड़े अभिभाग प्रतिशत कम्पेयर टू सर्वघाती,
कम्पेयर टू उसका अनुभाग कम होगा, बरोबर।
और वो जो कन्वर्जन हुआ तभी वो देशघाती में थोड़े रहे तो उसमें ज्यादा थे, तो वो जो डिफरेंस था वो स्पर्धक वो अनुभाग प्रतिशत का क्या हुआ?
देखो देखो, आपका कहना है, देखो परमाणु है और उसमें फलदान शक्ति है, तो उसका क्या होगा इस आपको कहें? जैसे उसमें ज्यादा, जैसे हम खटास देखेंगे या तीखास थी, हम उस भाषा में बोलेंगे, बहुत खटास थी वो माइल्ड हो गई, तो उस खटास का क्या हुआ? अरे वो माइल्ड हो गई ना, यानी वो कुछ परमाणु निकल गए उसकी बात नहीं है, परमाणु तो परमाणु रहा। अभी हम कलर की भाषा में बोलेंगे, अब कोई परमाणु है डार्क कलर का था, अब वो फिक्का हो गया, लाइट हो गया कलर, तो क्या हुआ? परमाणु परमाणु रूपी रहा, पहले डार्क परमाणु था अभी लाइट हो गया, तो उस कलर का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो तो चेंज हो गए ना, अवस्था उसकी पलट गई, परमाणु तो उधर ही है अभी। उसमें फल ज्यादा देने की शक्ति थी, ज्यादा क्या देते? ज्ञान पर पूरा आवरण डालता, अभी क्या हो गए? मैल, तो मति ज्ञान को अभी नहीं रोक सकता। सत्ता में था तब कितनी पावर थी? मति ज्ञान को पूरा रोक दे। उदय में आते आते क्या हुआ? माइल्ड हुआ, तो क्या हुआ? मति ज्ञान को कोई रोक नहीं सकता।
सर्वघाती का देशघाती क्यों हो गया? व्हाट फॉर द व्हाट रीजन?
रीजन ऐसा है कि ये मति शुद्ध ज्ञान तो हमेशा प्रकट रहता ही है, पूरा ही ज्ञान से रहित कोई जीव हो ऐसे हो ही नहीं सकता। या ऐसे ही देखो, जीव को फेवरेबल ही पूरी वस्तु व्यवस्था है, कोई भी वस्तु, कोई भी जो सम्यक दर्शन प्राप्त होना है, मुनि अवस्था प्राप्त होना है, समय केवल ज्ञान, ये सभी जीव के फेवरेबल सभी कंडीशंस है, परंतु जीव ने अपने को कभी जीव ही माना नहीं, यही उसकी मूर्खता हुई है। अपने को उसने पुद्गल को ही मैं हूं ऐसा मान लिया है, और इसी भूल के कारण ये सारे जो कोई कर्म का बंधन वगैरह सारा प्रोसेस चलता रहता है। बस अपने को जैसा है वैसा स्वीकार करना है। अभी स्वीकार करने में क्या करना है? ना शरीर को निकाल बाहर करना है और ना ही कुछ राग द्वेष में परिवर्तन करना है, जो कुछ यथा योग्य होना है होने दो। पहले में पहले स्वीकार क्या करना है कि मैं जीव हूं और मुझमें इतनी कैपेसिटी है केवल ज्ञान जीतनी। अब ये फिर इतना सारा स्पर्धक और प्रकृति क्यों क्यों दौड़ा दौड़ी करते हो? तो जितना हम जानते हैं ना उतनी स्पष्टता और ये क्लैरिटी हो जाती है। ज्ञान में जितनी क्लैरिटी होती है उतनी अपनी श्रद्धा भी, वैसे निमित्त रूप से कहेंगे, वो भी दृढ़ता आ जाती है। क्योंकि इसमें इस संबंध में अपना कन्फ्यूजन चलता है कुछ न कुछ, और कुछ कोई बातें ऐसी बता देते वो सच लगने लगते, परंतु ये कर्मों की बात जब हम पढ़ेंगे तो इतनी स्पष्टता होती है और पूरा रीजनिंग हमारे ख्याल में आ जाता है। और ये ऐसा होता ही है, कल बात है ना, वस्तु व्यवस्था में क्यों को कोई स्थान नहीं है, जो जैसा होता है वैसा केवल ही भगवान जानकर बताते हैं, बस दैट इज द एंड। तो इसके लिए व्हाट इज द प्रूफ? देखो, भगवान की वाणी प्रमाण कहलाती है। तो वहां धवला में ये प्रश्न बहुत बार पूछा है, तो इसके लिए दूसरा क्या प्रमाण है, यानी उसके लिए प्रूफ क्या है? तो वह ऐसा कहते हैं कि ये जो सबसे महान जो प्रमाण है उसके लिए अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जो वस्तु स्वयं प्रमाणभूत होती है उसको अन्य प्रमाण से उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। आपके यहाँ सूरज उगा है कितने बजे उगता है?
छह
बजे. अच्छा, तो आठ बजे तो काफी ऊपर आ जाता है ना, तो वो उगा है कि नहीं उगा? यहाँ कौन से टॉर्च यूज करते हैं? एवर रेडी है, कौन सी बैटरी? क्यों हर्षद भाई नहीं यूज करते? अरे वो स्वयं प्रकाशित है, उसको दूसरे प्रकाश है, वो है कि नहीं जानने की जरूरत नहीं है. भगवान की वाणी इटसेल्फ प्रमाण है, क्योंकि वो केवल ज्ञानियों ने जानकर वो सारी बातें बताई है. तो उसको सिद्ध करेंगे, साइंस ने प्रूव किया तो मानेंगे, नहीं तो नहीं. अरे ऐसी जरूरत नहीं है. मैं तो बहुत बार बोल चुकी हूं, पेन साइंटिस्ट किसको कहते हैं? जिसकी खोज पूरी नहीं हुई है, अरे चल रही है. और सर्वज्ञ किसको कहते हैं? अभी खोजने का कुछ बाकी नहीं रहा है. तीन काल, तीन लोक की, आलोक की सभी बातें एक क्षण में, एक समय में जानते हैं. सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को युगपत जानते हैं, उनको सर्वज्ञ कहते हैं. अब हमारा ज्ञान क्षोभम ज्ञान, अभी कहे ना मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, इतना अल्प ज्ञान है. हम थोड़ा और थोड़ा 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 जानने की कोशिश करते करते कुछ कुछ ऐसे हाथ में लगता है, और उसके द्वारा हम केवल ज्ञानी के ज्ञान को, ये टॉर्च लेकर सूर्य को देखने को चले हम कि सचमुच सूरज उगा है कि नहीं उगा.
जैसे अपन टीचर को पूछते नहीं है, ये 12 इंच का एक फुट क्यों है?
अब हम आगे बढ़ेंगे. देखो
तो बहन जी, ऐसे कर सकते हैं जब फलदान शक्ति है.
एक मिनट, एक मिनट. फलदान शक्ति,
फलदान शक्ति क्या? जो सर्वघाती कर्म जब देश घाती हो जाते, माने फलदान शक्ति तीव्रता से मंदता हो गई, ऐसे बोल सकते हैं?
स्पर्धक, स्पर्धक कहेंगे. सर्वघाती स्पर्धक जो है ना, देखो प्रकृति केवल ज्ञानावरण बदलकर मति ज्ञानावरण अभी नहीं बदले बनेगी, तो स्पर्धकों में चेंज हो जाएगा.
तो ऐसे समझा सकते हैं,
उसकी फलदान शक्ति कम हो गई.
हाँ,
अभी वो सजातीय में जो संक्रमण वगैरह होते हैं वो विषय यहाँ का नहीं है. हम जितना विषय उसकी बात करेंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन बहुत बढ़ेगा. एक एक जो है वो सरल करके समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे. क्योंकि क्या है, कर्म थ्योरी इतनी वास्ट है और बहुत कुछ जानने लायक है उसमें. एक एक बात हम जानकर आगे बढ़ेंगे. देखो ये पैराग्राफ अभी पढ़ते, वर्तमान में सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं होना ही क्षय कहलाता है. यहां क्षय का अर्थ सत्ता में से नाश नहीं है. जो हम कहते ना वो तो क्षायिक समय दृष्टि हुआ, तो क्या हुआ? मिथ्यात्व का क्षय हो गया. यहां क्या बात है? सर्वघाती का उस रूप उदय नहीं हो रहा. भविष्य में तो वे स्पर्धक पड़े हैं, सत्ता में है, परंतु सर्वघाती रूप से वे कभी उदय में नहीं आते हैं, है वही बने रहते हैं. तो क्या कायम जीव को प्रदेशों में रहेंगे? नहीं, छोड़कर जाएंगे, परंतु देशघाती होकर चले जाएंगे. स्थिति पूर्ण हुई तो देशघाती रूप होकर उदय में आते हैं. उनका उदीर्णा होकर उदय रूप न होना क्या कहते हैं? अभी लगातार लाइन में खड़े हैं तो हम क्या कहते हैं? इंडिया में क्या होता है, यहाँ तो सब क्यू कोई ब्रेक नहीं करता है ना. इंडिया में क्या होता है, लंबी क्यू लगी है तो हमारे कोई फ्रेंड दूसरे तीसरे नंबर पर खड़े हैं तो हम जाके उसको ज्वाइन हो जाते हैं, या हम बोलते हैं हमारा भी टिकट निकाल दो आपके साथ. तो हमारा 100वां नंबर छोड़कर हम दूसरे तीसरे नंबर पर आ गए, घुस गए. तो ऐसे क्या है, जो कर्म भविष्य में पड़े हैं उसमें से कुछ परमाणु निषेक है ना, एक एक समय में एक एक निषेक है, तो उसमें से कुछ परमाणु अपनी जगह छोड़कर जल्दी उदय में आते हैं, तो उसको कहते हैं उदीर्णा होना. तो ऐसी उदीर्णा यदि हो जाए और सर्वघाती रूप से उदय में आए तो ऐसा नहीं बन सकता, ये कहना चाहते. सदवस्था रूप उपशम का अर्थ क्या है? उदीर्णा होकर उस रूप से उदय नहीं होता. वो परमाणु नीचे भी आएंगे तो किस रूप से आएंगे? देशघाती रूप से आएंगे. तो सदवस्था रूप उपशम कहलाता है. वर्तमान में उदय देशघाती स्पर्धकों का होता है, यानी मति ज्ञानावरण का उदय तो चल रहा है परंतु किस रूप में है? देशघाती रूप. उसका अर्थ क्या है? मति ज्ञान का पूरा घात नहीं कर सकता. क्या मैं तो उसको कभी कभी उदाहरण देते हैं कि हम ओढ़ने का लेते हैं ना, क्या कहते हैं आप उसको, चादर ले ली, हाँ तो छोटी होगी तो क्या होगा, सिर रखेंगे तो पूरे जाएंगे और पैर रख जाओ तो सिर खुला रहेगा। तो ऐसे एक मति ज्ञानावरण देश गाती है तो पूरा उसका घाते मति ज्ञान तो खुला रहेगा ही रहेगा। देशघाती कहते ही उसे है जो पूरा घात करने में समर्थ नहीं है। इसलिए एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों को मतिशुत ज्ञान रूप उघाड़ तो होता ही है, कोई भी जीव ज्ञान रहित नहीं होता। ये मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण के बारे में ये अभी हमने देख लिया, मति ज्ञानावरण पर घटित किया है, ऐसा ही श्रुत ज्ञानावरण में होता है। सूक्ष्म निगोदिया जीवों में भी ज्ञान का कुछ न कुछ अंश प्रकट रहता ही है। अब जो अवधि ज्ञानावरण की बात की थी वो अभी आएगी। तुम पूछोगी अभी अभी आपने अवधि ज्ञानावरण कर्म को, कर्म को यानी प्रकृति को, देशघाती प्रकृति कहा था तो हमें अवधि ज्ञान प्रकट क्यों नहीं है, ख्याल है ना। मति ज्ञानावरण प्रकृति देशघाती है और हमें मति ज्ञान प्रकट है, वैसे अवधि ज्ञानावरण प्रकृति भी देशघाती है तो हमें अवधि ज्ञान क्यों नहीं है, सिंपलेस्ट है ना। तो आगे उसका उत्तर, तुम्हारा प्रश्न मार्मिक है परंतु थोड़ा अधिक विचार करने पर तुम स्वयं ही उसका उत्तर दे सकोगे। आपने अभी उत्तर दिया था ना, हाँ देखो, हमें अवधि ज्ञान प्रकट नहीं है, यह हमारी योग्यता से प्रकट नहीं है, इसका पहले स्वीकार करो। हम पहले में पहले कहाँ देखते हैं, कर्म की तरफ। आपका अवधि ज्ञान क्यों नहीं है, हमारा अवधि ज्ञानावरण का उदय चल रहा है। तो पहले में पहले क्यों नहीं है, तो जीव की अपनी योग्यता से वो प्रकट नहीं है। अब रही कर्म की बात, अवधि ज्ञानावरण में कौन कौन से स्पर्धक हो गए, उसमें सर्वघाती भी हो गए और देशघाती भी हो गए। तो अवधि ज्ञानावरण में जो सर्वघाती स्पर्धक है उनका नाम क्या है, शैल, अस्थि और दारू बहुबा। उनका अभी उदय चल रहा है, यानी अभी वर्तमान में उदय किस रूप चल रहा है, सर्वघाती रूप से, इसलिए अवधि ज्ञान प्रकट नहीं है। यह हमारा औदयिक अज्ञान है। अभी वो उसको पांच भावों के उसकी भाषा में समझाया है। हमें अभी मति ज्ञान प्रकट है, उसको हम कौन सा ज्ञान कहते हैं, क्षोभशम ज्ञान है। हमें अवधि ज्ञान नहीं है, क्यों नहीं, अभी हम कर्म की भाषा में बोलेंगे कि अवधि ज्ञानावरण का उदय चल रहा है। तो ये जो ज्ञान नहीं है ना प्रकट, तो उसको क्या कहेंगे, औदयिक अज्ञान। आपको केवल ज्ञान है क्या, नहीं है, क्यों, केवल ज्ञानावरण का उदय चल रहा है, उसको क्या कहेंगे, औदयिक अज्ञान है। और जो हमें ज्ञान प्रकट है उसको क्या कह रहे हैं, क्षयोपशमी ज्ञान। ये दो इतने ख्याल में रखना, अभी हमारा जो ज्ञान प्रकट है उसको हम क्षयोपशम ज्ञान कहेंगे, क्यों, मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण का क्षोभशम चल रहा है। क्षोभशम का अर्थ क्या है, वर्तमान में सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं है, देशघाती स्पर्धकों का उदय है और भविष्य में वह सर्वघाती पड़े। और अवधि ज्ञानावरण के बारे में क्या हो रहा है, हमारे अवधि ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है, देशघाती और सर्वघाती दोनों का उदय वो हो रहा, तो सर्वघाती है ना वहां, तो देशघाती क्या करेगा उसके सामने, तो सर्वघाती तो पूरा घात कर रहा है,
तो क्षयोपशम ज्ञान नहीं है,
वहां है ही नहीं है, अवधि ज्ञान प्रकट ही नहीं, तो उसको हम क्षयोपशम ज्ञान कैसे कहेंगे, तो नहीं है क्या कहेंगे, अज्ञान है, क्यों, उस कर्म के उदय की अपेक्षा उसको औदयिक अज्ञान कहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं,
एक सिंपल से शब्द में,
हाँ
क्षयोक्षम को अगर कहें तो ऐसा कह सकते हैं क्या, क्षयोक्षम और शायिक दोनों के बारे में, क्षयोक्षम को ऐसा कह सकते हैं कि जो ज्ञान होता भी है और नहीं भी रहता है, कभी होता है कभी नहीं होता है।
आपका ऐसा कहें ना, क्षयोक्षम ज्ञान में थोड़ा खुला है थोड़ा नहीं है, ऐसा, हाँ, उसको हम क्षयोक्षम, हाँ, कहेंगे, हाँ, और क्षायिक में क्या कहेंगे,
वो हमेशा स्थायी रूप से ज्ञान रहेगा,
क्षायिक, परंतु उसके कर्मों की क्षय रूप अवस्था चल रही है, ये उसकी में महत्व है। जब क्षायिक ज्ञान कहते हैं कौन सा, केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान कौन से कर्मों के क्षय से होता है?
चारों घाती कर्म के,
चारों घाती उसकी बात है। हाँ, क्या अकेले केवल ज्ञानावरण के का होगा कि पांचों ही ज्ञानावरण का क्षय होना चाहिए? अकेले केवल ज्ञानावरण का क्षय हो जाए बात नहीं, क्योंकि होता तो सभी का एक साथ होता है, तो पांचों ही ज्ञानावरण का क्षय होने से केवल ज्ञानावरण होता है, है? तो उसकी बात हम आगे लेंगे, अभी तो अपने इतने क्षोभम तक बात सीमित करेंगे।
ऐसे क्यों नहीं होता है अवधि ज्ञान में भी, जैसे मत्ति और श्रुत में सर्वघाती पर्तकों का देश घाती हो जाते हैं, अवधि ज्ञान में ऐसे क्यों नहीं होता?
आपका प्रश्न ऐसा है, अवधि ज्ञान में ऐसा क्यों नहीं होता? तो होता है जिनके अवधि ज्ञान प्रकट है,
पार्शियली होता है।
जो मुनिराज है या जो कोई समय दृष्टि है जिसको अवधि ज्ञान है, या जो देवनारकियों को तो अवधि ज्ञान होता ही है, अभी वो मिथ्या है क्या सु है उसकी बात छोड़ दो, तो जिनको अवधि ज्ञान है उनकी पोजिशन क्या चल रही है? उनके अवधि ज्ञानावरण कर्मों के सर्वघाती स्पर्धकों का वर्तमान में उदयाभावी क्षय, उनके भविष्य में पड़े हैं, और वर्तमान में उदय किसका है? अवधि ज्ञानावरण के देशघाती स्पर्धकों का उदय है। आपने कहा ना क्यों नहीं होता, होता है, किसके होता है? जिसके अवधि ज्ञान प्रकट है उसके होता है। तो वो हुआ इसलिए अवधि ज्ञान हुआ ऐसा नहीं है, अवधि ज्ञान अपनी योग्यता से हुआ तब सामने कर्मों में कौन सी अवस्था है, तो इस तरह से। मति यही कहा ना, मति ज्ञान बिल्कुल नहीं होता ऐसा तीन काल में नहीं होता, यानी प्रत्येक जीव का मति ज्ञान श्रुत ज्ञान प्रकट रहता ही है, थोड़ा ना थोड़ा तो रहता ही है, ऐसी ही वस्तु व्यवस्था है, परंतु अवधि ज्ञान होगा भी और नहीं भी होगा। मति श्रुत ज्ञान तो होगा ही होगा, निगोद को भी होगा, एक इंद्रियों को भी होगा, दो इंद्रियों को भी होगा, पंच इंद्रियों को भी होगा, मति श्रुत ज्ञान तो सबको है, कहाँ तक? बारहवें गुण स्थान तक।
तो अवधि ज्ञान में सर्वघाती स्पर्धक है उनका देशघाती नहीं होते, जो वर्तमान सर्वघाती
होते हैं किसके? जिसका अवधि ज्ञान खुला है उसके लिए।
हाँ, दूसरे सत्ता में।
और जिसको आप हमको अवधि ज्ञान नहीं है तो हमारे सर्वघाती का उदय चल रहा है, इतनी बात ख्याल में आई? ये बहुत घन 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 हो गया क्या? ये प्रकृति और स्पर्धक इसमें डिफरेंस थोड़ा, यानी गौर करके सुनेंगे ध्यान में कि हमें समान शब्द लगते हैं, वो भी सर्वघाती ये भी सर्वघाती, इतना ही उसमें।
मुझे इतना क्लियर नहीं होता है, तो ये दोनों के प्रोसेस में डिफरेंस क्यों है?
डिफरेंस नहीं है, मति श्रुत ज्ञान सब जीवों को है ही, तो उसके देशघाती का ही उदय चलेगा, अवधि ज्ञान सभी जीवों को नहीं है, जिसको नहीं है उसको सर्वघाती का उदय चलेगा, जिसको है उसके देशघाती का उदय चलेगा, ख्याल है? इतनी बात, अब हम यहीं रुकेंगे, अपना समय हो चुका। बोलो 2400 भगवान की जय।